खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस सुबह के लिए, तेरी खुदा खुदा जिंदगी बख्श आवाज़ के लिए जो खुदावंद हम सबको तहरीरी सूरत में बाइबल मुकद्दस के खुदा खुदा इस रूप में तूने दिया है। सो खुदावंद आज हम तेरी आवाज़ पर अपने कान लगाएं, हम सबको खुदावंद छू, तेरा पाक रूह हम सबको कुव्वत और तकवीयत दे ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ। आपको वो गीत याद होगा हम गाते हैं अक्सर, असी मर मुक जाना सी जे तू ना फजल करदा, असी किधर जाना सी जे तू ना फजल करदा। खुदा के फजल के बगैर हम सब क्या हैं जी, महरूम। इसलिए आए मेरे साथ निकालें आज, फिर आज की सुबह हम देखेंगे लूका तबीब की मात पर लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 9 बाप उसकी हम 37वीं आयत से 43वीं आयत तक पढ़ेंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह एक बदरुग्रस्ता लड़के को शिफा देता है। और ये हमने पिछले दिनों में देखा था, यीशु मसीह पहाड़ पर था, उसकी सूरत बदल गई और जब वो नीचे आया तो क्या हुआ। 37वीं आयत में लिखा है, फिर जब हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उसे आ मिली और देखो एक आदमी जिसने भीड़ में से चलाकर कहा, ऐ उस्ताद मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरे बेटे पर नजर कर क्योंकि वो मेरा इकलौता है। और देखो एक रूह उसे पकड़ लेती है और यकायक चीख उड़ता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कफ भरता है और उसको कुचल कर मुश्किल से छोड़ती है। और मैंने तेरे शिगिर्दों की मिन्नत की के उसे निकाल दे लेकिन वो निकाल ना सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेअतकादो और कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, अपने बेटे को यहां ले आ। वो आता ही था कि बदरू ने उसे पकड़कर मरोड़ा और यीशु ने उस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया। और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। लेकिन जिस वक्त सब लोग सब कामों पर जो वो करता था तजुब करते थे, उसने अपने शिगिर्दों से कहा, पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। जब कलाम का हिस्सा होता है तो आपने बातें नहीं करनी, क्योंकि कलाम के वक्त तवज्जो जब है ना जी आपकी तरफ जाती है। तो इसीलिए बहुत सी दफा मुझे रुकना पड़ा कि आपकी तरफ देखूं, लेकिन आप बातें ही करती रही। और अभी अभी किसी ने सिगरेट पी, उसका सारा धुआं अंदर आया है। मुझे सिगरेट से क्या है जी, एलर्जी है। एलर्जी ये नहीं कि दाने निकल आते, मुझे सिगरेट से ना बड़ी नफरत है, उसका धुआं मुझे ना जी बड़ा परेशान करता है। तो कोशिश किया करें, खासकर बच्चे, जब कलाम पढ़ना है तो आप गौर से सुने, क्योंकि ये रूहानी जंग है। ये क्या है जी, रूहानी जंग। अबादत क्या है जी, रूहानी जंग है। इसमें पहले ही हमारे बहुत से मुखालिफ हैं, जिसमें शैतान, बदरूह हैं, नापाक फरिश्ता, फरिश्ते और बहुत सी ऐसी कुवतें हैं जो चाहती नहीं कि हम क्या करें जी, खुदा के हुजूर सुबह सवेरे उठकर क्या करें, दुआ करें। तो आपको बताना चाहता हूं यहां पर भी यीशु मसीह अभी अभी पहाड़ से नीचे आया है और वो अपने खास 3 दोस्तों को, शिगिर्दों को लेकर गया है, पतरस, यकूब और यहन्ना, जिन्होंने यीशु मसीह को उस हालत में देखा जिसमें एक दिन हम सब होंगे। और वो हालत क्या है जी, जलाली हालत। वो हालत वो माहौल है जब हम खुदा की बादशाही में जलाली बदलों में होंगे। और जैसे यीशु मसीह दूसरे दिन पहाड़ से नीचे उतरता है, बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी है और उस भीड़ में एक बंदा है और उस बंदे का एक ही इकलौता बेटा है। और यहां पर हम देखते हैं कि इकलौता बेटा इकलौते बेटे को क्या करता है जी, रहाई देता है। खुदा का इकलौता बेटा, क्या लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यहां पर इस गरीब का भी इकलौता ही बेटा है जिसकी हालत बयान की गई है कि वो बदलू गरीबता है। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और दुनिया में हम देखते हैं जब किसी के अंदर बदरू रहती है तो उसकी मुश्किल और बहुत सी मुख्तलिफ क्या होती हैं जी, हालतें होती हैं। इसकी जो बयान की गई है जी, यहां पर लिखा गया है कि जब बदरू से पकड़ती है तो वो यक वक्त क्या करता है, यकायक चिल्ला उठता है, चीखे मारना शुरू कर देता है। वो चीखे मारना शुरू करता है, बदरू से बड़ी मुश्किल छोड़ती है और तरोड़ मरोड़ कर फेंक देती है। और जब हम इसी वाक्या को पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में, तो मत्ती की इंजील में यही बाप मत्ती से लिखते हुए कहता है कि ये लड़का जब बदरू उस पर आती है तो वो आग में गिर पड़ता है, उसे पटकती है जमीन पर, बड़ा दुख देती है और उसे क्या कहता है जी, मिर्गी का दौरा जिसे कहते हैं, मिर्गी आती है, वो लोटपोट बेहाल बेगौर बे कह सकते हैं जी इख्तियार हो जाता है जब बदरू से पकड़कर उससे क्या करती है, झंझोड़ती है। तो यहां पर उसकी सारी हालत को देखते हैं और वो क्या है जी, इकलौता है, उसका एक ही बेटा है और खुदा का एक ही बेटा जो आसमान को छोड़कर क्या आता है जी, जिसका एक ही बेटा है उसे रहाई देता है। और उसने क्या कहा, मैंने तेरे शिगिर्दों की मिन्नत की लेकिन वो निकाल ना सके। वो क्यों निकाल ना सके, बहुत अब हम सोचते हैं, सवाल करते हैं क्यों निकाल ना सके, कभी आपने सोचा है क्यों?
उसका ईमान नहीं था,
उनके ईमान ने, उनके ईमान की बेतकादी ने और बे ईमान थे, उनका ईमान बहुत कमजोर था। क्यों? मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील में, जब यही वाक्य हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील, मेरे साथ निकाल लीजिए जरा मत्ती की इंजील 17वां बाब, जब हम देखते हैं उसकी 20वीं आयत में लिखा है, 20वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, शिगिर्द जाकर यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम क्यों इसे निकाल नहीं सके, क्यों इस बच्चे को शिफा नहीं दे सके। तो 20वीं आयत में यीशु मसीह शिगिर्दों के सवाल का जवाब देता है जो वो अलैदगी में जाकर पूछते हैं। 20वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, मत्ती 17 बाब उसकी 20वीं आयत, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राही के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा और वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए मुमकिन ना होगी। और आगे परंथसी में जिसमें कहते हैं कि जो बात गौर की है, जिस पर खुदावंद का कलाम हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है, जब जब आप अपनी बाइबल में किसी भी आयत को, किसी भी बात को परंथसी से कहते हैं, दोनों तरफ से बंद किया हो, वो खास खास इसलिए लिखी गई है कि इस बात पर हमें गौर करनी है। और यहां पर भी उर्दू बाइबल में जो गौर के लिए लिखा गया है, साइड से डॉट लगाया गया है, जैसे कह सकते हैं बंद कर देना। 21वीं आयत में लिखा है, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। तो यहां पर गौर करवाई गई है कि बेएतकादी का जो वजह है वो क्या है, वो क्यों कम ईमान है, उनका ईमान है लेकिन ईमान की कमी है। और यीशु मसीह ने उसके लिए जो वापर बात बताई है, जो करने की जरूरत है, वो क्या है जी, दुआ। और अगर हम इसी वाक्य को एक और जगह पर पढ़ें तो यीशु मसीह क्या कहता है, द्वार और रोजे के बगैर ये कुछ भी नामुमकिन है। सो हमें जो आज सीखना है यहां पर, यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को उनकी इस कमजोरी के बायस क्या कहता है कि तुम्हें दुआ करने की जरूरत है। क्योंकि पहाड़ पर भी हम देखते हैं यीशु मूसा और एलिया से बातें कर रहा है और पतरस और यकूब और यूहन्ना नींद से जागे हैं और अभी ठीक ही हुए हैं और उन्होंने देखा और सदे में गिर गए कि मूसा एलिया और यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। और जगह ब जगह हम देखते हैं यीशु मसीह की जिंदगी, हम इसीलिए सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम उससे सीखें। वो दुआ करने वाला दुआ को सूरमा है। हम अपने यीशु से सीख सकते हैं कि वो किस तरह दुआ करता है। वो बहुत दफा सारी सारी रात दुआ में गुजारता है, हम भी गुजार सकते हैं। वो बहुत दफा तन्हाई में जाता है, इसीलिए उसने कहा कि अपनी कोठरी बंद कर और वहां पर किसी को पता ना चले। सो वो शख्सी दुआ है, हम शख्सी तौर पर अपनी फैमिली से अलग, फैमिली के साथ, फैमिली से अलग, कलीसिया के साथ, कलीसिया से अलग। नए चर्च में मैं सोच रहा हूं कि स्टेज के आगे दो कुशन वाली टेबल बनाएंगे जिसके ऊपर अगर कोई जमात में से अलग होकर वहां पर जाकर खुदा के हुजूर अपना दिल खाली करना चाहती हो चाहता हो तो वो जाकर क्या कर सकता है जी, घुटने नहीं दुखेंगे। वो क्या होगा जी, फोम वाला जिसे कहते हैं मर्सी सीट बनाएंगे, जैसे आपने हो सकता है चर्चेस में देखी हो। तो जाकर अलहदा होकर आप क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। बहुत से चर्चेस में अगर चर्च एतवार को 10 बजे लगता है या 9 बजे लगता है तो लोग आधा घंटा पहले आकर दुआ में वक्त गुजारते हैं, अपनी दरखास्तें मना जाते पेश करते हैं, अलहदगी में जाकर कर सकते हैं। सो दुआ पर आज मैं चाहता हूं कि हम जोर दें। सुबह की दुआ के अलावा आप जानते हैं दिन में कितनी दफा दुआ करते हैं, उसका एक तरीका है। अगर आपके पास फोन है तो याद दहानी के लिए अलार्म लगाएं। मैंने अपने फोन में लगाए हुए अलार्म आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उससे फायदा क्या होता है, याद दहानी होती है कि क्या करना है, कब फोन कब कब दुआ मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। यहां पर मेरे फोन में आप देख सकते हैं ये क्लॉक, 4 अलार्म लगे हुए हैं जिनमें से 3 एक्टिव हैं, चौथा मैंने बंद किया हुआ है। और पहला है जी 7:10 पर, दूसरा है जी 1:16 पर, तीसरा है जी 3:33 पर। तो आप भी अपने फोन में लगा सकते हैं और इससे आप आयत को भी याद कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं, अपनी आदत बना सकते हैं। क्योंकि हम सबको दुआ की जरूरत है, अपने लिए, कलीसिया के लिए, दूसरे ईमानदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई, माँ बाप, अगर कोई शादीशुदा है तो पूरी फैमिली के लिए। हमें हर रोज दुआ पर गौर करने की जरूरत है। तो यहां पर यीशु मसीह ने यही उनको कहा कि ऐ बेर कादो और कजरों लो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक। यीशु मसीह हरगिज नहीं कह रहा कि वो हमें छोड़ देगा। दरअसल यहां पर वो ये बात कर रहा है, क्योंकि अगले हिस्से में हम जाकर अगली किस्त में पढ़ेंगे, मुझे किस्तों से सिखाने का मजा आता है और उम्मीद है कि आपको भी किस्तें देखने का मजा मिल रहा है, रूहानी तौर पर बरकत मिल रही है ना जी। क्योंकि जब हम तरतीबवार खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हमें पूरी कहानी समझ आती है, ना कि मैं आज आपको यहां से पढ़ाऊं और उसके बाद फिर पदेश में से भी मैंने तकलीफ के बारे में बात की और फिर मैं मुकाशमा में पहुंच जाऊं तो समझ आएगी नहीं। तो आज मैं सिर्फ चाहता हूं कि हम दुआ पर गौर करें, दुआ पर गौर करें, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर कहता है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त کروں گا. دراصل یسوع مسیح کا وقت نزدیک ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے جو کنجی ہے یسوع مسیح ان کو سکھانا چاہتا ہے. بیٹی پھر کیا مسئلہ آپ کو؟ تو وہ ان کو سکھانا چاہتا ہے کہ میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کیونکہ یسوع مسیح جس مشن کو پورا کرنے کے لیے زمین پر آیا ہے وہ کر کے پھر آسمان پر چلے جائے گا، پھر وہ جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر کیا رہے گا، ان کے ساتھ رہے گا. اور ایسے ہی آج ہمارے ساتھ ہے. سو دعا کی اہمیت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. دعا کے ساتھ روزوں کا سیزن ہے. یہ روزے ہم اسے کہہ سکتے ہیں فرضی روزے ہیں، جو فرض کیے گئے ہیں جی، عائد کیے گئے ہیں جی، کہ سال میں 40 روزے رکھنے ہیں. ہم جزوی روزہ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں اتوار کے علاوہ. جزوی روزہ میں آپ خود کیا کرتے ہیں؟ خدا کے ساتھ سمجھوتا، خدا کے ساتھ اپنی گزارش، منت، التجا کرتے ہیں، مقصد رکھتے ہیں یا کوئی منصوبہ رکھتے ہیں، تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں 40 روزوں کے علاوہ. کیونکہ یسوع مسیح نے یہ 40 روزے اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں بہت دیر پہلے. ہمیں بائبل مقدس میں کہیں بھی 40 روزوں کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا جب یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یسوع تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. تو یسوع نے کہا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے کیا براتی ماتم کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یسوع مسیح نے کہا جب تک میں ان کے ساتھ ہوں ان کو ماتم، ان کو فاقہ کرنے کی ضرورت لیکن نہیں ہے، لیکن جب وہ دلہا ان سے جدا ہوگا تو یہ کرے گا. دلہا ہمارے ساتھ روحانی طور پر ہے، ہم 40 روزوں کے علاوہ روزہ رکھ سکتے ہیں اتوار کا دن چھوڑ کر، کیونکہ وہ خوشی کا دن، فتح کا دن، جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. ہم دعا کر سکتے ہیں جب چاہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ہفتے کے 6 دن جب چاہیں، پورا سال. سو دعا پر اور روزے پر غور کریں. 40 روزوں کے علاوہ بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں. سو یہاں پر یسوع مسیح اس کے اکلوتے بیٹے کو کیا کرتا ہے جی؟ شفا دیتا ہے. اور شاگرد واپس جا کر پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا، مسئلہ کیا تھا؟ تو ہمیں بھی بہت دفعہ یہ سوال اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے بہت سی بدروحوں کو نکالتے وقت بہت دفعہ مجھے یہ سبق سیکھنے کو ملا ہے کہ مسئلہ کیا تھا، کیوں وہ بدرو نہیں نکلی اسی وقت، کیوں دوبارہ جا کر کرنا پڑا. ایک جگہ پر 3 دن تک دعا کرتے رہے اور 2 دفعہ اس عورت میں جس میں بدرو تھی اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کو اس بدرو کو یسوع کے نام میں جانا پڑا. تو جو روح خدا نے شاگردوں کو دیا ہے وہ روح ہمارے ساتھ ہے، اور دعا اور روزہ اور کلام کے وسیلہ سے آپ بھی چلتے پھرتے یسوع مسیح کے کیا ہیں جی؟ گواہ ہیں. ہللویا. آپ بھی خدا یسوع مسیح کے نام میں کام کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ تعلیم نہیں دیں گے، وہ کہیں گے صرف سانو ہی اختیار ملیا ہوا، کسی اور کو اختیار نہیں ملیا. ایماندار ہوتے ہوئے یسوع کے نام میں قدرت ہے، اور ہماری قدرت کس طرح جاری رہتی ہے، کس طرح ہم بہا رہتے ہیں؟ روزہ، دعا اور کلام. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، کیسے جی؟ بائبل سے. اور دعا سے ہمارا رشتہ کیا ہوتا ہے جی؟ اور مضبوط ہوتا ہے. اور روزہ ہماری زندگی میں ہر طرح کے وہ جو جی ہے نا جی رکاوٹیں اسے دور کرتا ہے. سو آئیں ہم خدا کے زور جھکیں اور دعا کریں.